मित्रों, मेलबर्न में पेनिनसुला समर म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है इन दिनों, जो कि 1 जनवरी से नए साल से शुरू हो गया और ये चलेगा 10 जनवरी तक। गर्व की और खुशी की बात तो ये है कि मैं इस उत्सव में विनोद प्रसन्ना साहब बांसुरी वादन प्रस्तुत करेंगे और वो होगा शुक्रवार 8 जनवरी को हमिंगबर्ड इको रिट्रीट रेड हिल में। तो विनोद प्रसन्ना साहब एक बांसुरी वादक परंपरागत परिवार से आते हैं, बेशुमार अवार्ड्स भी वो जीत चुके हैं और दुनिया के कई देशों में बांसुरी वादन उन्होंने प्रस्तुत किया है जिससे कि लोग मंत्रमुग्ध हुए हैं। आइए देखते हैं उनकी बातें, उनका संगीत आप सबको कितना मंत्रमुग्ध करता है। तो नमस्कार विनोद जी।
नमस्कार कुमुद जी।
सबसे पहले तो हम गौरव मानते हैं अपना कि आप यहाँ मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में बांसुरी वादन प्रस्तुत कर रहे हैं।
धन्यवाद।
सबसे पहले विनोद जी, हमें बांसुरी वाद्य यंत्र के बारे में बताइए। ये तो एक प्राचीनतम भारतीय यंत्र है जिसे हम कृष्ण की रासलीला में और राधा कृष्ण के नृत्य में हम देखते हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए।
बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसको लोग साज भी बोलते हैं। सो बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक बहुत ही सिंपल और बांस से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य है। कुछ कुछ लोगों सोचते हैं कि ये लकड़ी है, लेकिन ये एक्चुअली बांस है। लकड़ी जो होता है वो पेड़ ठोस होता है, लकड़ी की भी बांसुरी होती है, लेकिन ये बांस एक सीधा सा इंस्ट्रूमेंट है। इसको लोग काटते हैं, फिर उसको मेजरमेंट करके अलग अलग स्केल में होता है और उसमें टोटल 6-7 छेद होते हैं बांसुरी में। और बांसुरी जो है अलग अलग साइज में आता है। तो बड़ी जो बांसुरी होती है वो हम लोग क्लासिकल के लिए यूज करते हैं, वो लगभग 3 फीट से 2.5 फीट 3 फीट ऐसे बड़ी बांसुरी होती है। अच्छा। जो कि बेस बांसुरी होती है वो क्लासिकल के लिए यूज होती है। आप अगर बॉलीवुड वगैरह में जो बांसुरी सुनते हैं वो एक्चुअली छोटी बांसुरी होती है, वो ज्यादातर फोक म्यूजिक में और आपका जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक होता है उसमें वो यूज किया जाता है। तो बांसुरी जो है कि बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपने बताया कि ये राधा कृष्ण के हिस्ट्री से चला आ रहा है, तो ये उससे भी पुराना है, उससे भी पुराना है। हाँ, ये हुआ कि आगे चल के धीरे धीरे ये और डेवलप हुआ और लोगों ने और शोध किया इसके अंदर, तो और उसके बाद में फिर ये क्लासिकल म्यूजिक में भी इसको काफी लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। पहले तो काफी मुश्किल था क्योंकि बहुत पहले जो है कि ये फोक म्यूजिक में ही इसको यूज किया जाता था बांसुरी, छोटी बांसुरी यूज किया जाता था। उसके बाद फिर इंडिया में कुछ लोगों ने अपना जो है कि बड़ी बांसुरी बनाई, जैसे मेरे नाना जी थे, पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी थे, उन्होंने बड़ी बांसुरी खुद बनाई और फिर बजाना शुरू किया। और पंडित पन्नालाल घोष जी थे जो कि उन्होंने बांसुरी जो है कि बड़ी बांसुरी बनाई। काफी, अगर कोई बड़ा बांसुरी बजाता है तो काफी मुश्किल होता है क्योंकि छेद जो होता है बांसुरी का, अगर बांसुरी बड़ी है तो वो दूर दूर होते हैं।
अच्छा,
तो उससे जो है कि काफी दिक्कत होता है। लेकिन हाँ, वही है कि आदमी अगर अभ्यास करे और प्रैक्टिस करे तो कोई भी काम दुनिया में वो मुश्किल नहीं है।
बिल्कुल। तो आपने चर्चा की अपने नाना जी रघुनाथ प्रसन्ना साहब की, तो अपनी परंपरा के बारे में और अपने परिवार के बारे में बताइए कुछ।
जी, मेरे मदर साइड में म्यूजिक है, तो मैंने जब मैं छोटा था तो मेरे फैमिली में सारे लोग बजाते थे बांसुरी और मुझे काफी अच्छा लगता था सुनने में, लेकिन मैं उस समय बजा नहीं पाता था। तो मैं बहुत ही छोटा था, 7 साल का। तो मेरे जो नाना जी थे, जो रघुनाथ जी के भाई जी थे, वो भी मेरे नाना ही थे, उन्होंने बोला कि तुम अगर सीखना चाहते हो तो दिल्ली आ जाओ और तुमको सब कुछ छोड़ के मेरे पास आके सीखना पड़ेगा। और क्योंकि ये हमारा जो म्यूजिक वहां पे सिखाया जाता है ये दूसरे टाइप का म्यूजिक है, ये नहीं है कि आपने आया और आपने 1 घंटा क्लास ले लिया और घर गए और आपने सीख लिया, तो वो जो है वो नहीं हो पाएगा। हमारा जो म्यूजिक है इसमें एक परंपरा होती है, गुरु शिष्य परंपरा, वो बहुत ही जरूरी चीज है। तो गुरु आपको ये नहीं देखता कि आप खाली म्यूजिक कर रहे हैं, गुरु आपको जीवन के बारे में भी सिखाता है और वो सिखाता है कि आप कैसे लोगों से व्यवहार करो और कैसे आप अपने लाइफ में अच्छा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मुझे अपने जो दूसरे जो नाना थे पंडित विष्णु प्रसन्ना जी, उनसे मैंने ये सारी चीज सीखी और वो बड़े डिसिप्लिन आदमी थे। वो मुझे सुबह 4 बजे भोर में ही जगा देते थे सुबह, और मैं प्रैक्टिस 4:30 बजे से 10 बजे तक नॉन स्टॉप करता था। तो काफी साधना करना पड़ा, वो काफी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मैं हमेशा उनको याद करता हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही जो भी मैं आज कर रहा हूँ उनकी वजह से ही मैं हूँ।
जी बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि एक कलाकार के लिए अनुशासन और साधना बहुत ही जरूरी है और एक नैतिक जीवन गुजारना भी बहुत ही आवश्यक है।
बहुत आवश्यक, मैं तो कहूंगा जी कलाकार के लिए नहीं, हर आदमी के लिए संसार में,
सही
अगर
है,
आदमी डिसिप्लिन हो और दया भाव हो अंदर में, तो ये सारी चीज, तो आदमी फिर दुखी नहीं होता है। क्यों नहीं दुखी होता? क्योंकि दूसरों के प्रति उसके अंदर दया है, तो वो समझता है कि मैं अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं तो मैं ही नहीं हूं, बहुत सारे लोग ऐसे गुजरते हैं। तो आप जो भी फील्ड में है उसके जरिए आप लोगों का हेल्प करते हैं।
बिल्कुल। कला आपको अनुकंपा भी सिखाती है, इसमें
जी
कोई शक नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि बांसुरी का जो हमारी परंपरा में, हमारे इतिहास में, संस्कृति में एक विशेष महत्व रहा है, क्या आज वो है अब तक जीवित या कि नहीं?
थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी क्या है कि जैसे आपने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं इस देश में रह रहा हूँ, या फिर अभी बहुत सारा फ्यूजन म्यूजिक भी चल गया है अभी, तो उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है हमारे म्यूजिक के ऊपर, क्योंकि हमारा जो म्यूजिक है वो तुरंत एक्साइटमेंट नहीं लाता है। अभी बहुत सारा म्यूजिक जो है वो आपको एक्साइटेड कर देता है, आदमी डांस करने लगता है, और फिर उसको काफी, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। आजकल सब कुछ बहुत इंस्टेंट हो गया है, आदमी को तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत। तो वो चीज हमारे म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में वो तुरंत नहीं होता है, उसको आदमी को सुनना पड़ता है, क्योंकि वो एक बहुत ही डीप म्यूजिक है जो कि
बिल्कुल
आपको ऊपर ऊपर के मन को क्लियर नहीं करता है, ये एकदम डीप में जा करके आपके अंदर जो भी स्ट्रेस हो वो सबको एकदम हमेशा के लिए रिलीज कर देता है।
बहुत सुंदर बात कही आपने हिंदुस्तानी या क्लासिकी संगीत के बारे में कि उसकी जड़ें तो पाताल तक पहुंची हुई हैं और
जी
उसका जो असर होता है मनुष्य के मन, दिल, दिमाग पर और हृदय पर, वो अभिभूत है।
जी
तो आपसे निवेदन है कि कृपया हमें थोड़ा सा कुछ सुनाइए।
जी और मेरे साथ यहाँ पे तबला पे हैं अमन कल्याण, जो
जी
कि तबला वादक हैं, वो डंडी नाव में रहते हैं, तो वो मेरे साथ बजाने जा रहे हैं। मैं आपके लिए राग हेमावती थोड़ा सा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ,
सुंदर,
रूपक ताल में,
आहा,
7 मात्रा में।
वाह वाह,
Thank you.
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर. आपका बहुत बहुत आभार, आपकी संगत देने वाले अमन भाई का भी बहुत आभार. और निसंदेह इसीलिए कहते हैं ना कि जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो न केवल गोपियां बल्कि चौपाये जो पशु थे वो भी उनके उन साथ साथ चल देते थे.
जी, वो इसलिए होता था क्योंकि हमारा जो ये म्यूजिक है वो हमारे दिल के फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट है.
वाह.
तो जब हमारा ये, मैं इसमें अभी शोध कर रहा हूँ, तो हमारा जो ये म्यूजिक है वो हमारे दिल से, हार्ट से, जो हार्ट फ्रिक्वेंसी होता है उससे वो कनेक्टेड है. तो हमारी जो हार्ट फ्रिक्वेंसी है, या किसी जानवर का वो हार्ट फ्रिक्वेंसी हो, या फिर किसी अनविजिबल जो चीज है उसका कुछ फीलिंग हो, या फिर कोई भी चीज है, ये म्यूजिक जो है वो उससे कनेक्ट है. तो वो जब वाइब्रेट होता है तो आदमी को एकदम वो भावुक हो जाता है.
बहुत सुंदर. पूरी पूरी आशा है कि आगे चलकर आपसे जरूर बातचीत होगी.
जी कुमुद जी.